श्रोताओं, आप सभी का मार्गदर्शक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम अंधेपन से बचने के लिए 7 कदम नामक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त हो रही है। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।
Listening friends.
नमस्कार हमारे श्रोता मित्रों,
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद।
इफ यू आर जॉइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम,
यदि आप पहली बार इस प्रसारण में सम्मिलित हो रहे हैं,
वी आर नियरिंग द एंड ऑफ अ सीरीज ऑफ मैसेजेस ऑन द सेकंड एपिस्टल ऑफ पीटर।
तो हम पत्रस की दूसरी पत्री पर आधारित संदेश श्रृंखला के समापन की ओर बढ़ रहे हैं।
In the last message, we began to look at chapter 3, verses 1 to 9.
अपने पिछले संदेश में हमने 3 अध्याय के 1 से 9 पदों पर गौर करना प्रारंभ किया था।
And in chapter 3, Peter tells us about the signs of the end of time.
और इस 3 अध्याय में पत्रस हमें अंत समय के चिन्हों के बारे में बताता है।
Peter tells us that while we must not trust false teachers, who deny the Bible as the Word of God,
पत्रस हमसे कहता है कि जबकि हमें उन झूठे शिक्षकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानने से इनकार करते हैं,
but we must trust God and the Bible as His Word.
परंतु आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर और बाइबल को उसका वचन स्वीकार कर विश्वास करें.
Our hearts must be stirred up for the Lord, and we must cling to the Scripture.
हमारे हृदय प्रभु के लिए शुद्धि में रहें और हम वचन के साथ लिपटे रहें.
He gives us several reasons.
वो हमें कई कारण देता है.
First,
पहला,
because the Bible is the Word of God.
क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है.
And secondly,
और दूसरा,
Peter tells us because God is in control.
पत्रस हमें बताता है क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण करता है.
In chapter 3 verse 3,
तीन अध्याय के तीन पद में,
Peter said that when you see apostasy in the church,
पत्रस कहता है कि जब तुम कलीसिया में धार्मिकता का त्याग देखो,
when you see people mocking the Bible,
जब तुम लोगों को बाइबल का मजाक उड़ाते देखो,
when you see the name of the Lord is taken in vain,
जब तुम देखो कि प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया जा रहा है,
when you hear arrogant blasphemy,
जब तुम्हें घमंडपूर्ण ईश्वर निंदा सुनाई दे,
when you see and hear all of this rather than being taken back by them,
जब तुम ये सब देखो और सुनो इसके बजाय कि वो तुम्हें अपने साथ मिलाएं,
you should see them as a definite indications that the end is near.
तुम्हें चाहिए कि इसे एक निश्चित चिन्ह जानो कि अंत निकट है.
Peter tells us in verse 4,
चार पद में पत्रस हमें बताता है,
that these false teachers, in order to ease their conscience, they will deny the coming of the Lord as a reality.
कि ये झूठे शिक्षक अपने अंतकरण को हल्का करने के लिए वो प्रभु के आगमन को सच मानने से इनकार करेंगे.
They will deny the judgment of God.
वो परमेश्वर के न्याय से इनकार करेंगे.
In their scoffing attitude, they'll say something like this.
अपने ठट्टा करने वाले स्वभाव में वे कुछ इस तरह कहेंगे.
People have been saying that Christ is coming back for a long time and he never came.
लोग कितने लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि मसीह वापस आ रहा है, लेकिन वो अब तक नहीं आया.
Why does Peter call these people scoffers in verse 3?
तीन पद में पत्रस इन लोगों को ठट्ठा करने वाले क्यों पुकारता है?
Because they are deliberately ignoring the fact that God is separated from the universe.
क्योंकि वो जानबूझकर इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि परमेश्वर सृष्टि से अलग है.
Indeed, he is above the universe.
सचमुच वो सृष्टि से ऊपर है.
He is in control of the universe.
वो सृष्टि का नियंत्रण करता है.
And earth and heaven are only held together by the power of his word.
और धरती और आकाश उसके वचन की शक्ति के द्वारा एक साथ स्थापित किए गए हैं.
Peter reminds us of who God is.
पत्रस हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर कौन है.
That God is the creator of all things.
कि परमेश्वर हर चीज का रचयिता है.
He said, remember the floods?
वो कहता है बाढ़ याद है.
God did it once and he will do it again.
परमेश्वर ने एक बार वैसा किया था और अब वो फिर करेगा.
Scoffers pride themselves in their knowledge and in their scientific theories.
ठट्ठा करने वाले अपने ज्ञान और अपने विज्ञान सिद्धांतों के कारण खुद पर घमंड करते हैं.
But God permits the volcanic eruptions and earthquake to demonstrate his power.
परंतु परमेश्वर ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंप के द्वारा अपनी शक्ति को दिखाता है.
What about the rain?
तो बारिश के बारे में क्या है?
Who could ever stop the rain?
बारिश को कभी कौन रोक सकता है?
Now, my listening friends, I want to tell you something very important.
अब मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ.
If God did not intervene millions of times each day in our lives,
यदि हमारे जीवनों में प्रत्येक दिन परमेश्वर लाखों बार दखल न देता,
we wouldn't have a chance to survive.
तो हमारे पास बचने का एक भी अवसर ना होता.
Scoffers pride themselves in their knowledge and they scoff at God.
ठट्ठा करने वाले अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं और परमेश्वर पर हंसते हैं.
And God may let them get away with it for a while.
और शायद परमेश्वर कुछ समय तक उन्हें ऐसा करने भी दे.
Why?
क्यों?
In order to give them a chance to change their minds and turn to Him.
उन्हें अपना मन फिराने और उसकी ओर लौट आने का अवसर देने के लिए.
But then ultimately they will have to face Him in the day of judgment.
परंतु फिर अंततः न्याय के दिन उन्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा.
God's word formed the heavens and the earth.
परमेश्वर के शब्दों ने आकाश और धरती को बनाया.
God spoke and they came into being.
परमेश्वर बोला और ये अस्तित्व में आ गए.
And we are one word away from the destruction of heaven and earth. earth.
और आकाश और धरती के विनाश से हम केवल एक शब्द की ही दूरी पर हैं।
In verse 6, Peter says, God is not only the creator.
6 पद में पत्रस कहता है कि परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है,
but he also has the power to bring judgment about.
परंतु उसके पास दंड लाने की भी सामर्थ है.
God can even destroy that which he created.
परमेश्वर उसे भी तबाह कर सकता है जो उसने खुद रचा.
It is foolishness to willingly forget or deny who God is and who we are.
ये मूर्खता है कि हम जानबूझकर भूल जाएं या इनकार करें कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं.
By his word he creates and by his word he destroys.
अपने शब्दों के द्वारा वो रचता है और अपने शब्दों के द्वारा वो नाश भी करता है.
John in Revelation 20 talks about the destruction of the earth.
प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में यूहन्ना धरती के नाश के बारे में बात करता है.
And Jesus prophesied in the Gospel of Matthew chapter 13 verse 40.
और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 40 पद में प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की.
As the tares are gathered and burnt in the fire, so it will be the end of the age.
जैसे घास फूस को इकट्ठा कर आग में जलाया जाता है, वैसा ही समय के अंत में होगा.
Peter says in verse 7, when God created the earth,
7 पद में पत्रस कहता है जब परमेश्वर ने धरती की रचना की,
he seeded it with sufficient water to destroy it.
तो उसने इसमें इसे नाश करने के लिए पर्याप्त पानी बोया है.
In the same way, he seeded the heavens and the earth with enough fire to destroy it.
इसी रीति से उसने आकाश और धरती को नाश करने के लिए इनमें पर्याप्त आग बोई.
In Colossians 1:17, Paul tells us.
कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 17 पद में पौलुस हमें बताता है.
In him, all things held together.
उसी में सब वस्तुएं बनी हुई हैं.
If his restraining and controlling hand were to be removed even for a millisecond.
यदि उसका नियंत्रण करने और संभालने वाला हाथ एक सेकंड के छोटे से भाग के लिए भी हट जाए,
the earth would melt like butter.
तो सृष्टि मक्खन की तरह पिघल जाएगी.
Right now, the heavens and the earth are kept for the day of judgment and destruction of the ungodly men.
इस समय ये आकाश और धरती न्याय के दिन और अधर्मी मनुष्य के नाश के लिए रखे हुए हैं.
God is not only the creator who puts all things together.
परमेश्वर केवल वो सृष्टिकर्ता ही नहीं है जो सब वस्तुओं को एक साथ बनाए रखता है.
But thirdly, in verse 8, God is always on time.
परंतु 8 पद में तीसरी बात कि परमेश्वर हमेशा ठीक समय पर है.
Scoffers will attempt to convince us that we are all gods.
ठट्ठा करने वाले हमें इस बात का यकीन दिलाने का प्रयत्न करेंगे कि हम सब परमेश्वर के हैं.
Or if there is a God, he has fallen asleep.
या ये कि हाँ एक परमेश्वर है जो सो गया है.
It's not so, Peter said.
ऐसा नहीं है, पत्रस कहता है.
Because one day with the Lord as a thousand years, and a thousand years is as one day.
क्योंकि परमेश्वर के लिए एक दिन हजार वर्ष जैसा और हजार वर्ष एक दिन जैसा है.
Peter is quoting here from Psalm 90 verse 4.
पत्रस यहाँ पर भजन संहिता 90 अध्याय के 4 पद में से बात कर रहा है.
Here's what the psalmist said.
ये है जो भजनकार ने कहा.
For a thousand years in your sight are like yesterday when it is past and like a watch in the night.
क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया वह रात का एक पहर.
My listening friends, please listen very carefully to this.
मेरे श्रोता मित्र कृपया इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा.
With God, there is no past, present, or future.
परमेश्वर के लिए कोई भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल नहीं है.
When he identified himself to Moses,
जब उसने मूसा को अपनी पहचान दी,
he told him that his name is I am.
उसने मूसा से कहा कि मेरा नाम है मैं हूँ.
Tell them, he said, that I am sent you.
उनसे कहना कि मैं हूं ने मुझे भेजा है.
I am means I was and I will be.
मैं हूं का अर्थ है मैं था और मैं रहूंगा.
Yet God does not call himself I was.
तो भी परमेश्वर अपने आप को मैं था नहीं पुकारता है.
Why?
क्यों?
Because that may indicate that he used to be.
क्योंकि इससे शायद ये लगे कि वो होता था.
He does not call himself I will be.
वो अपने आप को मैं होऊंगा नहीं पुकारता है.
Why?
क्यों?
So that we don't imagine that he is only yet to come.
ताकि हम ये न सोचें कि वो तो अभी आने वाला है.
But he said I am.
परंतु उसने कहा मैं हूँ.
Which means I was, is and will be.
जिसका अर्थ है कि मैं था हूँ और रहूंगा।
Peter tells us that one word brought the creation into being.
पत्रस हमें बताता है कि वो एक शब्द सृष्टि को अस्तित्व में लाया।
And one word will end all things.
और एक ही शब्द सब वस्तुओं का अंत कर देगा।
Peter tells us that we are dealing with the one to whom time is not divided into past, present and future.
पत्रस हमें बताता है कि हम उसके सम्मुख खड़े हैं जिसके लिए समय अतीत, वर्तमान और भविष्य में नहीं बटा है।
God is infinite in his essence.
परमेश्वर अपने सार में असीम है।
God is absolute in his dominion.
परमेश्वर अपनी प्रभुता में पूर्ण है।
God is ultimate in his power.
परमेश्वर अपनी शक्ति में अनोखा है।
God is transcendent in his glory.
परमेश्वर अपनी महिमा में श्रेष्ठ है।
You might imagine it this way.
आप इसकी कल्पना इस तरीके से कर सकते हैं।
If you get on a boat on the furthest northern point of a long river and travel southward.
यदि आप एक लंबी नदी के बिल्कुल उत्तरी भाग से नाव पर चढ़कर उसके दक्षिण की ओर जाएं।
It will take some time before I get to the mouth of the river.
तो मुझे नदी के मुहाने पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा।
When I'm halfway,
जब मैं आधे रास्ते में हूँ,
somebody else sails off right at the beginning point where I started.
तो एक और व्यक्ति जहाँ से मैंने शुरू किया था, वहीं से वो भी यात्रा शुरू करता है।
Leading the same direction southward.
उसी दक्षिण की ओर जिस ओर मैं जा रहा हूँ।
And when the second person is halfway,
और जब ये दूसरा व्यक्ति आधे रास्ते में है,
a third person begins the journey.
तो एक तीसरा व्यक्ति यात्रा प्रारंभ करता है।
But in space, a powerful satellite can see the entire length of the river.
परंतु अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली उपग्रह नदी की पूरी लंबाई को देख सकता है।
From one end to the other,
एक छोर से दूसरे छोर तक।
It can see all three boats.
ये तीनों नावों को देख सकता है।
The one near the mouth.
एक जो मुहाने के पास है।
The one near the middle.
एक जो मध्य के निकट है।
And the one at the beginning.
और एक जो अभी शुरू में है।
That is how life is.
जीवन इसी तरह से है।
God sees it all in full view.
परमेश्वर इसे पूर्ण रूप से देखता है।
Beginning.
प्रारंभ।
Middle.
मध्य।
And end.
और अंत।
We see it in stages.
हम इसे अलग-अलग देखते हैं।
But he sees it in full.
परंतु वो इसे एक साथ पूर्ण रूप से देखता है।
And that is why a period of 1,000 years is like a day for him.
और इसी कारण 1,000 वर्ष का समय उसके लिए एक दिन के समान है।
Because the Lord sees it all in front of him.
क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ अपने बिल्कुल सामने देखता है।
And only he knows when he will interrupt the flow of history.
और केवल वही जानता है कि कब वो इतिहास की धारा में रुकावट डालेगा।
And he will end the world as we know it.
और जैसे कि हम जानते हैं वो संसार का अंत करेगा।
In verse 9 Peter tells us.
9 पद में पत्रस हमें बताता है।
That God promised to end the history of the ungodly people with judgment.
कि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो भक्तिहीन लोगों के इतिहास का अंत न्याय के साथ करेगा।
And God will keep his promise.
और परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा।
If it appears to us that there is a delay,
यदि हमें ऐसा लगता है कि देर हो रही है,
it does not mean that God is unfaithful to his promise.
तो इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में अविश्वसनीय है।
It is only because he is patient.
ये केवल इसलिए है क्योंकि वो धैर्यवान है।
God longs for no one to perish.
परमेश्वर किसी के लिए नहीं चाहता कि वो नाश हो।
God desires that all should come to repentance.
परमेश्वर की इच्छा है कि सब पश्चाताप करें।
God purposely extends the years of grace.
परमेश्वर उद्देश्यपूर्वक अनुग्रह के वर्षों को बढ़ा रहा है।
Why? So that men and women have every opportunity to be saved.
क्यों? ताकि पुरुष और स्त्री के पास बचने का हर अवसर हो।
He delays his day of judgment long enough so that those of you who are listening to us who do not believe may come to hear his message and turn your heart toward him.
वो अपने न्याय के दिन में इतनी देर इसलिए करता है ताकि आप जो हमें सुन रहे हैं, आप में से जो विश्वास नहीं करते हैं, वो उसके संदेश को सुनने के लिए आएं और अपने हृदय उसकी तरफ मोड़ें।
Jesus is welcoming you right now.
यीशु इसी वक्त आपका स्वागत कर रहा है।
He is ready to forgive you your sin.
वो आपको आपके पाप क्षमा करने के लिए तैयार है।
And assure you of heaven right now.
और इसी वक्त आपको स्वर्ग का आश्वासन देने के लिए।
Will you come to him?
क्या आप उसके पास आएंगे?
He is waiting for you.
वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है.
But then there are some of you who are listening who are believers.
परंतु फिर आप जो सुन रहे हैं आप में से कुछ विश्वासी हैं.
God has a plan for your life and he wants to use you before he returns.
परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और वो वापस आने से पहले आपको इस्तेमाल करना चाहता है.
I want to illustrate this by telling you a story as I conclude.
मैं समाप्त करते हुए इसका उदाहरण आपको एक कहानी बताकर देना चाहता हूँ.
There was a man of God who was used of God to bring thousands and thousands to the foot of the cross.
परमेश्वर का एक जन था जिसे परमेश्वर ने हजारों हजार लोगों को क्रूस के चरणों में लाने के लिए इस्तेमाल किया.
When he was a young man and in his final year as law student,
जब वो नौजवान था और अपनी कानून की शिक्षा के अंतिम वर्ष में था,
he was sitting in a village law office.
वो एक गांव के कानून कार्यालय में बैठा था.
It was very early in the morning.
ये बहुत सुबह का समय था.
And he was sitting alone when he heard the Lord speak to his heart.
और वो अकेला बैठा था कि तभी उसने प्रभु को उसके हृदय के साथ बात करते हुए सुना.
What are you going to do when you finish your course?
अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम क्या करोगे?
He answered, "Put out the shingle and practice law."
उसने कहा, बाहर एक तख्ती लगाकर वकालत करूंगा.
Then what? Says the Lord.
उसके बाद प्रभु ने कहा.
He replied and said, "Get rich."
उसने उत्तर दिया और कहा, अमीर बनूंगा.
Then the Lord spoke to him again and said, "Then what?"
फिर प्रभु फिर उससे बोला और कहा, और उसके बाद?
He said, "I'll retire."
उसने कहा, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा.
And the Lord said another time, "Then what?"
और प्रभु ने फिर कहा, उसके बाद?
He said, "I'll die."
उसने कहा, मेरी मृत्यु हो जाएगी.
Then the Lord said to him again, "Then what?"
फिर प्रभु ने एक बार फिर उससे पूछा, और उसके बाद?
And the words came out of his lips with trembling.
और उसके कांपते हुए होंठों से शब्द निकले.
Then the judgment.
फिर न्याय होगा.
At that thought, the young man left the office.
इस विचार के आते ही वो नौजवान कार्यालय से निकला.
He went into the woods and he knelt and he prayed.
वो जंगल में गया और घुटने टेक कर प्रार्थना की.
And as he prayed, he saw himself at the judgment seat of Christ.
और प्रार्थना करते हुए उसने खुद को मसीह के न्यायासन के सामने पाया.
He saw that he had spent his life in a self-centered, self-serving way.
उसने देखा कि उसने अपना संपूर्ण जीवन आत्मकेंद्रित और अपनी ही सेवा में बिताया था.
And he had not spared a thought for his eternity.
और उसने अपने अनंत काल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था.
He came out of the woods a changed man.
वो एक बदला हुआ व्यक्ति बनकर जंगल से बाहर आया.
And after a long struggle with the question of the purpose of life.
और जीवन के उद्देश्य के प्रश्न पर लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद.
He dedicated his life to the preaching of the gospel.
उसने सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पण किया.
And he became an effective instrument to God's purpose.
और वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए एक बहुत ही प्रभावपूर्ण साधन बना.
Let me ask you, my listening friends, as I conclude.
समाप्त करते हुए मैं आपसे पूछता हूँ मेरे श्रोता मित्रों.
Have you spared a thought for your eternity?
क्या आपने एक बार भी अपने अनंत काल पर विचार किया है?
So that you may know where you'll be on the day of judgment.
ताकि आप जान लें कि न्याय के दिन आप कहाँ होंगे?
It is my prayer that you would not go to sleep today until you answer this question.
ये मेरी प्रार्थना है कि जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर ना दें आप सोए नहीं.
And until next time, I wish you God's richest blessing.
अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.
की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है जीवन की इस लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ चलते
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप जीवित परमेश्वर के विषय में या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। और हाँ, अपनी प्रार्थना बिनतियाँ लिखना ना भूलें। यदि आप आपके विश्वास में सात साहसिक पग नामक पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम मार्गदर्शक, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम मार्गदर्शक, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mdhindi@radiovv.org, mdhindi@radiovv.org। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।